सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाऊनं सिद्धादधट्टमला विशुद्धबुद्धिये लद्धसौवथा तिहुवनशिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सौवे तिहुवनभवनपसर्य पच्छक्खवबोहकिरणपरिवेढो उयो वियणत्थवणो अरहन्तदिवायरो जयौ तिरयणखगणिहारे णुत्तारियमोहसेण्णशिरणिवहो आयिरियराउपशिवौ परिवालियभवियजियलो अण्णानन्दयारे अणोरपारे भमन्तभवियाणम् उज्जोजेहिको पश्यन्तु सया उच्छाया दुहतिह्वति सा विनड्य तिह्वणभवियाणसुठुरायेण परिठवियाधम्मपवा सुअजलवाणपयाणेन सन्धारियशीलहरा उत्तार्यचिरपमाददुःशीलभरा साहू जयन्तु सौवे शिवसुहपहसंठियाहुनिगलियभया। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता हैं पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। नवमी पुस्तक जो चतुर्थ खंड है उसमें कृति अनुयोग द्वार की बात यहाँ चल रही है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 40 पर आ गए, 40। देशावधि ज्ञान के हमने बहुत सारे भेद यानी विकल्प देखे, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक। उसमें द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा, किस तरह से वो विकल्प होते हैं उसकी भी हमने चर्चा की। अब यहाँ ये 15 गाथा के नीचे जो है शंका के ऊपर की लाइन, वहाँ से पढ़ते हैं। अवधि ज्ञान स्वरूप जो जिन वे अवधि जिन हैं। अवधि ज्ञान का इतना सविस्तार वर्णन करने के पश्चात कहते हैं अवधि ज्ञान स्वरूप ऐसे जो जिनेन्द्र है। जिनेन्द्र ने यहाँ जिन यानी मुनियों की बात है, एक देश जिन उन्हें भी कहा था ना। तो अवधि ज्ञान स्वरूप जो जिन वे अवधि जिन हैं। शंका, गुण स्वरूप अवधि ज्ञान के गुणीपना कैसे युक्त है। देखो अवधि ज्ञान तो गुण की बात है ना, गुण की यानी ज्ञान गुण की विशिष्ट पर्याय उसकी बात है, और यहाँ अवधि ज्ञानी तो गुणी हुआ, द्रव्य हुआ, वह विशिष्ट व्यक्ति हुआ, उस जीव की बात है। तो गुण को के बदले आप जीव को क्यों यहाँ बता रहे हैं, क्या कहते हैं। गुण स्वरूप अवधि ज्ञान के गुणीपना कैसे युक्त है, यानी अवधि ज्ञान स्वरूप ऐसा जो जीव यानी जो जिन उसको यहाँ अवधि जिन कहा है। तो कहते हैं यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि गुणी को छोड़कर गुणों का अभाव है। गुण कहाँ रहते हैं, गुणी के गुणों के समूह को तो ही द्रव्य कहेंगे या गुणी कहेंगे। तो गुण पर्याय को भी कहते, कहीं कहीं गुणों को तो गुण कहते ही हैं, गुण कहो या गुणों की पर्याय कहो, ये किसके आधार से है? तो द्रव्य के आधार से है, तो द्रव्य से कोई पृथकभूत वस्तु तो नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गुणी को छोड़कर गुणों का अभाव है। गुणी को छोड़कर यानी अपने द्रव्य को छोड़कर गुण कहीं दूसरे जगह पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं होती। अर्थात गुणी गुण और गुणी में भेद न होने से अवधि ज्ञान स्वरूप जिन के कहने में, जिन के यानी जिन, ये हम जिनके उनके वो बात नहीं, अवधि ज्ञान स्वरूप जिन के कहने में कोई विरोध नहीं है। यानी जिन कौन से अवधि जिन कहा ना, जो अवधि ज्ञान स्वरूप है वे अवधि जिन है, ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं है। शंका, जिनों को अवधि से विशेषित किस लिए किया जाता है? वो जिन शब्द के पहले अवधि शब्द लगाने की क्या जरूरत थी, ऐसा पूछता है शंकाकार। उसका समाधान, जो अवधि ज्ञान से रहित जिन है उनका निषेध करने के लिए जिनों को अवधि से विशेषित किया गया है, क्योंकि वो स्पेसिफिक उनका जो कुछ बात है वो बताने नहीं, ये अवधि ज्ञान से युक्त है। इसलिए जो अवधि ज्ञान से युक्त नहीं है, यानी एक एक को लेके उनको नमस्कार करें, बाद में अवधि जिन की बात की करेंगे, बाद में जो कुछ है उनको भी नमस्कार करेंगे। तो यहाँ अवधि की बात हो रही है, तो इन्हें छोड़कर अन्य की बात नहीं है यह बताने के लिए ओही जिन या अवधि जिन कहा। शंका, अवधि जिन कौन है? वो त तो का न करना, जित हुआ है ना, जिन करना। समाधान, रत्नत्रय सहित अवधि ज्ञानी अवधि जिन है, समय दर्शन समय ज्ञान समय चारित्र युक्त ऐसे जो मुनिराज है उनको अवधि जिन कहा है। यहाँ अवधि ज्ञानी चौथे पांचवे वाले को यहाँ अवधि जिन नहीं कहा है। चारित्र की भी मुख्यता है ना वहां पर, चौथे वाले को सम्यक चारित्र नहीं है ये बात नहीं है, परंतु वो स्थिरता नहीं है इसलिए उन्हें चारित्र की कमी है। तो मुख्यता जहां चारित्र की है उनकी अपेक्षा से अवधि जिन कहा, क्योंकि हमने जिन भगवान के भेद देखे थे, सकल जिन और एक देश जिन। तो रत्नत्रय सहित अवधि ज्ञानी अवधि जिन है, ऐसे अवधि जिनों को नमः अर्थात नमस्कार हो यह अभिप्राय है। दूसरे सूत्र में हमने देखा था नमो ओहि जिनानम कहा था, उसकी यहाँ ये सारी चर्चा हो रही है। फिर शंका, महाव्रतों से रहित दो रत्नों अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के धारक, ये बात पूछी ना उसने, महाव्रतों से रहित है और सम्यक दर्शन है सम्यक ज्ञान है, परंतु महाव्रत नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, ऐसे बात नहीं कहा, महाव्रत नहीं है उनके, ये प्रश्न तो बाह्य की अपेक्षा पूछा है, परंतु वहां उनकी उतनी स्थिरता नहीं है। जिसकी इतनी स्थिरता होती उसके बाह्य में भी ऐसे व्रत सहज होते ही है, परंतु उपदेश है वो तो बाह्य की अपेक्षा कहेंगे। तो महाव्रतों से रहित ऐसे जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के धारक अवधि ज्ञानी तथा अवधि ज्ञान से रहित जीवों को भी क्या कहते, इसका अर्थ कौन हुआ, चौथे और पांचवे वाले, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है वहां पर परंतु महाव्रत नहीं है, अनुव्रत नहीं है, ऐसी भी बात नहीं, महाव्रत नहीं है। तो ऐसे जीवों को या जो कोई चौथे पांचवे वाले हैं परंतु अवधि ज्ञान भी नहीं है परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान तो है ही, तो उनको भी क्यों नहीं नमस्कार किया जाता? ये चलती है ना बात, ये तो आगम समत देव शास्त्र और गुरु को ही वंदना पूजा भक्ति आदि कुछ होता है, ये चौथे पांचवे वाले की भक्ति करो उसके आरती गाओ ऐसी बातें नहीं हो सकती। क्या करें, हाँ अर्घ्य चढ़ाओ ये तो चलता रहता है ना, तो दुनिया में तो यही सब चलता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा, इनको नमस्कार क्यों नहीं करता, क्यों नहीं किया जाता। समाधान, अहंकार से महान जीवों में चरणाचार अर्थात सम्यक चारित्र रूप प्रवृत्ति कराने के लिए तथा प्रवृत्ति मार्ग विषयक भक्ति के प्रकाशनार्थ उन्हें नमस्कार नहीं किया जाता। वो प्रकाशना एक शब्द हुआ ना, तो श पूरा लिखना उसके, प्रकाशनार्थ ऐसा अलग अलग लिखना। देखो इसका अर्थ हम देखते हैं। अहंकार से महान जीवों में चरणाचार अर्थात सम्यक चारित्र रूप प्रवृत्ति कराने के लिए, चौथे पांचवे निचली भूमिका वाले हैं उनमें ये तो महाव्रतादि जो कुछ बाह्य से महाव्रतादि नहीं है और अंतरंग की अपेक्षा स्थिरता नहीं है, तो वो कराने के लिए। दूसरी बात, प्रवृत्ति मार्ग विषयक भक्ति के प्रकाशनार्थ। प्रवृत्ति मार्ग है ना, यही वो महाव्रतादि जो प्रवृत्ति मार्ग कहा, चरणानियोग के आज्ञा अनुसार जो जिस भूमिका में व्रतादि होते हैं वो बाह्य में तो हम कहेंगे ना ये उनकी प्रवृत्ति होती है। मुनियों की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो 28 मूल गुण पालन करने का राग है वहाँ पर, और उनकी प्रवृत्ति भी विशिष्ट होती है, जैसे समितियों का वो पालन करते हैं, देख के चलना, विशिष्ट पद्धति से आहार लेना, खड़े खड़े आदि जो कुछ बातें हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और उसके प्रति भक्ति, क्योंकि हम अवधिजनों को नमस्कार करके मुनियों को नमस्कार कर रहे हैं, तो मुनि कैसे प्रवृत्ति मार्ग में है ना अभी, तो उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए, ये बताने के लिए, प्रकाशनार्थ है ने वो समझाने के लिए, बताने के लिए उन्हें, उन्हें ने जो इस मार्ग में नहीं है उन्हें नमस्कार नहीं किया जाता है, इन्हें नहीं करना चाहिए भी उसमें बात आ गई ना। लोग तो ये समय दर्शन की बात तो छोड़ो, लौकिक में भी ये जिसको कुअवधि कहते हैं, कुछ थोड़े भी आगे पीछे की बातें जानते हैं, कुछ निमित्त ज्ञान भी होता है, और चमत्कार समझकर उनके पीछे भागते हैं, फिर इनको देव समझकर पूजा होते हैं, इतनी बाकी रह जाती है उनके। इस प्रकार देशावधि जिनों को नमस्कार करके, ये देशावधि की बात यहाँ समाप्त होती है, परमावधि जिनों को नमस्कार करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। अभी अवधि ज्ञानियों की बात समाप्त नहीं हुई, देशावधि की समाप्त हुई है। अब परमावधि और सर्वावधि, इसके भेद है अवधि ज्ञान के, उसको भी बताएंगे। अब तीसरे नंबर का सूत्र ऊपर पढ़ते हैं, नमो परमोहि जिनाणम। पहले क्या कहा था, नमो ओहि जिनाणम, और वहां ओहि का शब्द अवधि यानी देशावधि किया था। यहाँ अलग से सूत्र है परमोहि, तो इसका अर्थ परम अवधि जिन, परमावधि जिनों को नमस्कार हो। परम शब्द का अर्थ ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ यानी उत्कृष्ट। परम ऐसा जो अवधि, वह परमावधि है। शंका, इस अवधि ज्ञान के ज्येष्ठपना कैसे है, देशावधि से परमावधि ज्ञान ज्येष्ठ है ने, उससे अच्छा, उससे बड़ा कैसे हो सकता है, उसका समाधान। चूंकि यह परमावधि ज्ञान देशावधि की अपेक्षा महाविषय वाला है। क्या कहते हैं, हमने जो विषय देखा था ना, कौन सा विषय है, तो पुद्गल विषय है। तो पुद्गल तो है, परंतु उसमें भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव कितना जानते हैं, उसको कहते हैं उस अवधि ज्ञान का विषय। तो हमने देशावधि के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जो देखे हैं, कितने द्रव्य तक को जानता है, कितने क्षेत्र तक जानते हैं, तो लोक तक जानते हैं, कितने काल तक, तो पल्ले में समय कम वहाँ तक उत्कृष्ट जानता है, और भाव में यथा योग्य जो असंख्यात पर्याय जानते हैं। परमावधि का जो है वो इससे भी अधिक क्षेत्र और काल को जानेंगे, भाव भी अधिक होंगे, और द्रव्य में उससे भी सूक्ष्म द्रव्य को जानेंगे, इसलिए इसका विषय भी महान है, बड़ा है। दूसरी बात, मनपरे ज्ञान के समान संयत मनुष्यों में ही उत्पन्न होता है। देशावधि में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। देशावधि ज्ञान तो चारों गतियों में ही हो सकता है, तिर्यंचों को भी, मनुष्यों को भी, देवों में, नारकियों में, तो वहां के जो सम्यक दृष्टि उनके भी देशावधि तो होता है। परंतु ये परमावधि किन में होगा? तो संयतों में ही होगा। संयत यानी मुनिराजों में ही पाया जाएगा, यानी छठे गुणस्थान से ही आगे ये परमावधि ज्ञान उनके होगा, उन जीवों को। तो मनपरे ज्ञान में भी ऐसा ही हमने देखा था, वो भी मुनिराजों के ही होता है, अन्य किसी को नीचे वाले गुणस्थानों में वो नहीं पाया जाता। परमावधि ज्ञान भी मुनिराजों में ही पाया जाएगा, नीचे के गुणस्थानों में चौथे पांचवे वाले को ये नहीं पाया जाएगा। तो दूसरी बात की कि संयतों में ही, संयत मनुष्यों में उत्पन्न होता है। पहली बात क्या की थी? उस नहीं, ज्येष्ठ क्यों है उसकी बात चल रही। उसका विषय बड़ा है, महाविषय वाला का ना, महाविषय वाला एक बात है, और संयतों में उत्पन्न होता है ये दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है? अपने उत्पन्न होने के भव में ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। परमावधि की बात है, जो परमावधि मुनिराज है वो उसी भव में मोक्ष चले जाएंगे, इसलिए इसको देशावधि से बड़ा कहा ना। पहले इसकी भी चर्चा आई थी कि वो देशावधि वाला वो प्रतिपाती ही होता है, तो उसका निषेध किया, ऐसा ही नहीं लगाना कहा था। यहाँ कहते हैं जो परमावधि वाले हैं वो तो उसी भव में मोक्ष जाएंगे ही। हाँ, ये नियम है लिखा ना, अपने उत्पन्न होने के भव में ही, यानी उसी भव में केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है और अप्रतिपाती है, तो अभी इसके बाद तो केवल ज्ञान ही उत्पन्न होने वाला है, तो ये तो गिरने का सवाल नहीं है। ये किसी संयत को परमावधि उत्पन्न हो, बाद में वो छूट जाए, देशावधि हो जाए, अब निकल जाए, ऐसा नहीं होता, तो उसको कहते अप्रतिपाती। जो ज्ञान नष्ट नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा उस भव में, उसको कहते हैं अप्रतिपाती। अर्थात सम्यक्त्व व चारित्र से च्युत होकर मिथ्यात्व एवं असंयम को प्राप्त होने वाला नहीं है। दूसरी भाषा में क्या है, वो मुनिराज का छठा सातवा गुणस्थान भी कभी चौथा पांचवा हो जाए वो बात अभी संभव नहीं है, क्योंकि परमावधि वाले है और परमावधि संयतों में होता है और परमावधि अप्रतिपाती है। इसका अर्थ क्या है, उनका सम्यक्त्व तो भ्रष्ट नहीं ही होगा, परंतु सम्यक्त्व बनाए रहता है, और कोई मुनिराज छठे सातवें से अभी छठे से गिरकर चौथे पांचवें में भी आ सकते हैं, वो संभावना भी यहाँ नहीं है। ना ही वे सम्यक्त्व से भ्रष्ट होते हैं, ना ही चारित्र से भ्रष्ट होते हैं, ना ही मिथ्यात्व आदि गुणस्थानों में जाते हैं, और ना ही असंयत भी होते हैं, यानी चौथे पांचवें में भी नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं है। वो मुनिराज क्षायिक भी हो सकते हैं और दूसरे वेदक भी हो सकते हैं, बाद में वो क्षायिक प्राप्त करके उसी भव में तो मोक्ष जाने वाले ही है। इसलिए उसके ज्येष्ठपना संभव है। देखो, वो परमावधि देशावधि से ज्येष्ठ क्यों है, इसकी ये चर्चा हो गई सब। देखो, क्या पहला क्या था, महाविषय है, दूसरा संयतों में उत्पन्न होता है, तीसरे उसी भव में मोक्ष केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अप्रतिपाती है, उसी का अर्थ क्या है, सम्यक्त्व से भी च्युत नहीं होते और चारित्र से भी च्युत नहीं होते। अब आगे, परमावधि रूप ऐसे वे जिन परमावधि जिन है उनके लिए नमस्कार है। जैसे अवधि ज्ञानी में हमने देखा था अवधि ज्ञान स्वरूप जिन, वैसे यहाँ परमावधि रूप ऐसे वे जिन है उनको नमस्कार करते हैं। शंका, यदि देशावधि ज्ञान से परमावधि ज्ञान ज्येष्ठ है तो इसको ही पहले नमस्कार क्यों नहीं किया? शंका कर तो कुछ न कुछ शंका पूछनी ही है। हा? उसका समाधान नहीं, क्योंकि देशावधि से ही परमावधि के स्वरूप का ज्ञान होता है। पहले हमने देशावधि को इतना डिटेल समझा है, अब ये परमावधि का स्वरूप समझेंगे, क्योंकि उत्कृष्ट देशावधि तक हम जान गए हैं, अब परमावती का जघन्य भी भेद समझाना है तो उत्कृष्ट देशावधि की अपेक्षा आगे वाला क्षेत्र क्या होगा, द्रव्य क्या होगा, उसकी बात करेंगे। अन्यथा नहीं होता। इस बात के ज्ञापनार्थ, ज्ञापनार्थ है ना, समझाने के लिए आपके ज्ञान में आए इसलिए देशावधि को पूर्व में नमस्कार किया है, अथवा परमावधि के स्वरूप के जानने का निमित्त होने से परमावधि की अपेक्षा चूंकि देशावधि महान है अतः उसे पहले नमस्कार किया है। महान किस अपेक्षा से? परमावधि को जानने का निमित्त है इसलिए उसको महान कहा, देशावधि को भी। दूसरी भाषा में उसको समझे बिना परमावधि का ज्ञान हमें नहीं हो रहा है इसलिए उसको पहले नमस्कार किया। नमस्कार करके पहले अवधि ज्ञान का, देशावधि का स्वरूप समझाया, फिर परमावधि का अब समझाएंगे। शंका, देशावधि से परमावधि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यहाँ सूत्र गाथा कहते हैं, यानी वो कैसे होता है उसके लिए अभी समझाएंगे कि परमावधि की क्या क्या बातें हैं उसकी हम गाथा पढ़ेंगे पहले। परमो ही असंख्य चाणि लोग मेताणि समय कालो दू रूव गदल है दौवम खेतोवम अगण जीवे ही। इसका अर्थ नीचे लिखा है। परमावधि उत्कृष्ट से क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात लोकमात्र क्षेत्र को, ये परमावधि में उत्कृष्ट क्षेत्र कितना हो सकता है तो उसको कहते हैं असंख्यात लोक। देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना देखा था? लोक, एक लोक। परमावधि का असंख्यात लोक। काल की अपेक्षा असंख्यात लोकमात्र समय रूप काल को जानता है, काल की अपेक्षा भी असंख्यात लोक कहा, ये कैसे हो सकता है? कल में मैंने बात की थी, अब लोक ये जो प्रमाण है वो क्षेत्र बताने के लिए भी हम वापरते हैं और काल यानी समय बताने के लिए भी हम उसको वापरते हैं। कैसे? एक लोक में जितने प्रदेश है, जैसे हमने देखा ना 343 घन राजू ऐसा जो है तो उसको हम लोक कहेंगे, तो उसको क्षेत्र को बताने वहां तक के रूपी द्रव्यों को जान रहा है तो ये क्षेत्र बताया। और काल में जब हम लोक कहेंगे, यहां तो असंख्यात लोक की बात है पर हम एक लोक की बात पहले देखें, तो काल की अपेक्षा जब लोक कहते तो एक लोक में जितने प्रदेश है उतने समय यहां समझना। एक लोक देखो, और ऐसे समय कितने हैं? असंख्यात लोक मात्र समय। देखो, काल की अपेक्षा असंख्यात लोक मात्र समय रूप काल को जानता है, ये समय रूप काल कहा, असंख्यात लोक मात्र काल को जानता है ऐसा भी नहीं कहा। हम हमेशा द्रव्य कितने हैं उसकी गणना करते हैं तो उसमें काल को कितना कहते हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। वो किस काल की बात हो रही थी वहां पर? हाँ, काल द्रव्य की। काल द्रव्य कितना है तो लोक में जितने प्रदेश है उतना है। यहां जो काल बात हो रही, काल की बात हो रही वो समयों की हो रही है, वो द्रव काल द्रव्य की नहीं, क्योंकि काल में हम अतीत और अनागत समयों की बात करते हैं। पूर्व में कितने काल तक का और पश्चात कितने काल तक को जानते हैं, तो लोक में जितने प्रदेश है उसको असंख्यात गुणा करो उतने अभी समय जानो, इतने समय पूर्व का तथा पश्चात का काल है वहां तक ये परमावधि जीव जानेंगे। वही अभी द्रव्य कितना है उसका, परमावधि का द्रव्य कितना है, उत्कृष्ट द्रव्य कितना होगा? देखो, देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य कितना देखा था हमने? कारमाण वर्गणा को ध्रुव भाग से भाग दिया था, वो उत्कृष्ट देशावधि हुआ। तो उसको फिर ध्रुवहार से भाग देंगे तो जघन्य परमावधि होगा, बराबर। अब परमावधि के जितने भेद है उतनी बार उसको ध्रुव भार से भाग देते 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 अंतिम जो कुछ होगा वो परमावधि का उत्कृष्ट द्रव्य होगा। ये हमने बहुत बार देखा ना द्रव्य का कैसा निकालना। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, वही शलाकाभूत, अभी इसका अर्थ समझने में वो सारे समझाएंगे आगे चलकर, वही शलाकाभूत क्षेत्रोपम अग्निकायिक जीवों से परिच्छिन्न रूपगत द्रव्य को, रूपगत द्रव्य को यानी पुद्गल द्रव्य को, रूपी द्रव्य को, वो रूपगत शब्द एक के ऊपर है उसको भी रूप शब्द कहते हैं ना, एक के लिए भी रूप शब्द आता है, उसकी बात यहाँ नहीं है। क्या कहते हैं, वही क्षेत्रोपम अग्निकायिक जीवन से परिच्छिन्न, परिच्छिन्न ने जाने हुए, इसका अर्थ समझेंगे अभी, रूपगत द्रव्य को उत्कृष्ट विषय करता है। अभी हमने ये जो यहाँ लिखा है जघन्य परमावधि से लेकर उत्कृष्ट परमावधि तक जितने क्षेत्र की अपेक्षा भेद है, वो क्षेत्र की अपेक्षा भेद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमावधि के कितने भेद है उसको जानना पड़ेगा, उतनी बार हम उसको भाग देते चले जाएंगे। दूसरी भाषा में ये जो यहाँ शलाका कहा है वो किसको कहना, परमावधि के भेदों को कहना। वो परमावधि के भेद कितने हैं, तो कहा क्षेत्रोपम अग्निकायिक जीव, क्षेत्रोपम अग्निकायिक जीव किसको कहना, तो अग्निकायिक जीवों की जो जघन्य उगाहना है, जघन्य में जघन्य किसके होती है, ये अवगाहना वाले भेदों में देखो जरा कौन से पॉइंट पर थी, हाँ सूक्ष्म अग्निकायिक जो अपर्याप्त है, हाँ तीसरे पॉइंट पर, क्योंकि पहले पॉइंट पर निगोद को लिया था, दूसरे पर वायुकायिक को लिया था, तीसरे पर अग्निकायिक या तेजकायिक को लिया था, वो सूक्ष्म तेजोकायिक लब्धि अपर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना थी। अब अग्निकायिक जीवों में ही अवगाहना के कितने भेद है, तो हमने उसे असंख्यात गुना असंख्यात गुना ये है वो है वो है करते करते बीच में बादरों को भी लिया, द्विंद्रियों को भी लिया, फिर बाद में किसको लिया, बादर जीवों की जघन्य अवगाहना ली, फिर सूक्ष्म जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना ली, और फिर जाकर बादर जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना ली। तो बादर तेजो का एक उत्कृष्ट अवगाहना 40 नंबर पर, ये जरा पेज नंबर निकालना, देखो ये अवगाहना के बीच 17 नंबर पृष्ठ पर से हमने शुरू किए थे, तो 3 नंबर 17 पेज पर देखा है, और उसके आगे जो 4, 5, 6 है वो भी असंख्यात गुणा उसकी अवगाहना थी, परंतु उन असंख्यात गुणा अलग अलग जीव है, परंतु वहां भी अग्निकायिक है कि नहीं है, अग्निकायिक की जघन्य से लेकर अग्निकायिक की उत्कृष्ट अवगाहना तक एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए अग्निकायिक की अलग अलग अवगाहना है। जैसे मिनिमम हम मान लेते हैं कि यहाँ कुछ 100 प्रदेश वाला है, 100 प्रदेश ऑक्यूपाई करता है, और उत्कृष्ट तक वाला कोई 1000 वाला होगा, तो 100 से लेकर 1000 तक के प्रत्येक एक एक अवगाहना अग्निकायिकों में पाई जाएगी। जैसे तीसरे नंबर पर सूक्ष्म तेज कायिक है, और चौथे पॉइंट पर सूक्ष्म अपकायिक है, जल कायिक, परंतु उतने अवगाहना वाले अग्निकायिक भी होगे ही होगे। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कभी कभी आवली का असंख्यात गुणा हुआ, कभी वो पल्ले का असंख्यात भाग हुआ, ऐसे बढ़ते बढ़ते 40 नंबर पर देखना, 19 पेज पर, सॉरी 37 तेजोकायिक 37 37 है, मैंने वो अपकायिक देखा, सॉरी 37 नंबर है, 37 नंबर 37 19 पेज पर तीसरी लाइन, 19 पृष्ठ पर तीसरी लाइन क्या लिखा है, उसके ही निवृत्ति पर्याप्त की यानी पर्याप्त बादर पर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। ये 37 नंबर तक ये सारे ही अग्निकायिक जीवों के अलग अलग अवगाहना के भेद हुए। अब अग्निकायिक जीवों के जितने अवगाहना के भेद है क्या करना, उसके लिए उत्कृष्ट अवगाहना में से जघन्य अवगाहना कम करना और एक मिला देना, तो अग्निकायिक जीवों के अवगाहना के टोटल भेद मिलेंगे हमें, उसको अग्निकायिक जीवों की संख्या से गुणा करना उतने परमावधि के भेद है। द्रव्य की अपेक्षा परमावधि के कितने भेद है वो उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। वो अग्निकायिक जीवों की संख्या हमने निकाली थी जो सबसे कम है ये सारे एकेंद्रियों में, फिर भी वो कितनी बार हमने उसके लिए कुछ गणित किया था याद है उसको? कुछ कैसे किया था उसकी बात नहीं, उसको क्या कहा था? हाँ, शलाकात्रय निष्ठापन करना। शलाकात्रय का अर्थ क्या होता है? जैसे हमने दो संख्या से शुरू किया तो दो संख्या है ना, तो दो का विरलन करो। दो संख्या से हमने शुरू किया है याद रखना, तभी दो को दो बार लिखो आपस में गुणा करो चार आया, ये एक बार गुणकार हुआ। अभी हमारी दो संख्या तो दो बार गुणकार करना चाहिए, अभी ये चार को चार बार लिखो आपस में गुणा करो 256 आ गए, तो ये दो राशि समाप्त हुई। अब जो 256 राशि आई वो 256 राशि को यहाँ शलाका रूप से स्थापित करो। अभी 256 को विरलन करो, हर एक के ऊपर 256 लिखो आपस में गुणा करो, तो 256 रेस टू 256 आ गए। फिर जो राशि आई अभी ये एक बार गुणकार हुआ, जो राशि आई उसको विरलन करो उसको आपस में गुणा करो, दूसरी राशि आई दो बार गुणकार हुआ, तीसरी बार गुणकार, ऐसे 256 बार गुणकार करो तो ये राशि समाप्त हुई। अब जो कोई नई राशि आ जाएगी एक उसको यहाँ लिख दो, और जो नई राशि आई थी उसको x बार लिखो आपस में गुणा करो। अब वो ऐसे गुणाकार कितने बार करना, तो x बार करना, ये तो तीन बार शलाका हुई। उसके बाद चौथी बार जो महाराशि आएगी उसको फिर स्थापित करो, उसको विरलन करो, और फिर 1 प्लस ये जो कुछ है इसको उसमें से माइनस करो, और जितनी बार है उतने इतने तो अग्निकायिक जीवों की संख्या होगी। संख्या भी नहीं है उसकी, वो तो शलाका आती है वर्गशाला का आती है, यानी इतना उनका प्रमाण है। तो उस प्रमाण से उनके अवगाहना के भेदों को गुणा करो, जो आएगी बात उतने परमावधि के भेद है। अभी हम पढ़ेंगे विशेषार्थ में।
एक मिनट देखिए, अभी हम जब अवगाहना की बातें देखते हैं तब हम ये जो अग्नि का एक जीव जो हमको दिखता है अग्नि, उसमें तो असंख्यात अग्नि के जीव है, मतलब उसके शरीर भी उतना ही है और जीव भी उतना ही है। अब कहने का मतलब ये है कि इससे छोटा दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों के अवगाहना है। अब ये क्यों जाना जाएगा, और जाना है हमने कि हम जो रात्रि भोजन करते हैं उसमें ये जीव आके गिरते हैं मरते हैं, हमको पता ही नहीं लगता है, ख्याल में है? और रात्रि भोजन करने मांसाहार समान कहा गया है, उसके पीछे ये है कारण है, क्योंकि हमें इस बात का मालूम नहीं ना। अभी हम परमावधि के भेद नहीं जानते थे तब तो बहुत आनंदित थे, और इतने बार अग्नि का एक जीवन से उसको गुणा करो ये करो, थोड़ा सा क्यों माथापच्ची हो रही है, इतना नहीं जानते तो अच्छा था। मैं ये कहता हूं कि ये अवगाहना के भेद भी जानने से हमें उस नतीजे पे आना चाहिए कि रात्रि भोजन में क्यों निषेध किया गया है, तो ये बात से हमको आसानी से उस बात को समझने में मतलब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ऐसा कहते हैं तो वो बात वास्तविक है क्या नहीं।
देखो ये 3.5 बार कहा, हाँ, और वो भी सबसे कम है अग्नि का एक जीव, वायु का एक अपका एक आदि उससे भी असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे हैं। और ये हमने 2 से शुरू किया था ना शलाकात्रय, तो समझने में बहुत दिक्कत आई, वहां तो स्टार्टिंग पॉइंट लोक है, स्टार्टिंग में एक लोक को एक लोक बार लिखो और आपस में गुणा करो, वहां से तो स्टार्टिंग पॉइंट है। ये 2 से स्टार्ट किया तो भी हमने छोड़ दिया, 1 से मान लिया उसको, ये केवल ज्ञानी ने बताई हुई बात है, किसी के कल्पना से भी ऐसा नहीं कल्पना कर सकते हम, क्योंकि ऐसी कल्पना क्यों करें टेडीमेड। देखो विशेष अर्थ कहते हैं, ये जो अभी हमने गाथा पढ़ी है इसी का अर्थ फिर दोबारा हमें समझाने के लिए ये जो कुछ भाषांतरकार है उन्होंने किया है। देखो परमावधि का विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र और काल तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, गाथा में भी लिखा था, कितना है उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है, यहाँ क्षेत्र ने प्रदेश बता रहे, और उत्कृष्ट काल भी असंख्यात लोक मात्र है, यहाँ समय बता रहे। अब ये क्षेत्र और काल की बात हुई ना, तो अभी कितने द्रव्य तक को जानता है कम से कम, अभी हम छोटी अवगाहना वाले कहाँ तक गए वो जानते हुए, तो कहते हैं उसी के विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्य को जानने के लिए यही प्रक्रिया है, यही है ने अभी जो हमने ऊपर गाथा में पढ़ी थी, क्या है तेज का एक जीव की जघन्य अवगाहना को उसकी ही उत्कृष्ट अवगाहना में से घटाकर शेष में एक रूप मिला देने पर ये हमें अवगाहना के भेद मिल जाएंगे, क्योंकि जघन्य को उत्कृष्ट में से माइनस करो और एक मिला दो, क्योंकि हमको जघन्य वाला भेद भी गिनना है और उत्कृष्ट वाला भी गिनना है, इसलिए वो एक मिलाना आवश्यक है, यानी ये भेद की बात हमें पता चली। उसके बाद क्या करना, जो प्राप्त हो उसे तेजकायिक राशि से गुणा करने पर, तेजकायिक राशि यानी तेजकायिक जीवों की संख्या, अभी तेजकायिक में वो पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए, सूक्ष्म बादर सबको लेना है, तेजकायिकों की टोटल संख्या उससे गुणा करने पर शलाका राशि उत्पन्न होती है। अब ये जो शलाका राशि है, शलाका राशि यानी क्या, ये अवधि ज्ञानी ये परमावधि के भेद है, उसको शलाका क्यों कहा वो अभी समझेंगे अभी हम। अब देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य में हमने देशावधि को समझा था, तो देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य भी जाना था कि कारमाण वर्गणा को एक बार ध्रुहार से भाग दिया था, बराबर, तो वो उत्कृष्ट देशावधि का जो द्रव्य है उसमें मनोवर्गणा के अनंतवे भाग रूप ध्रुवहार का बार बार भाग देकर शलाका राशि में से एक एक कम करते जाना चाहिए। हम मान लेते हैं कि उत्कृष्ट जो देशावधि है वो इस पॉइंट पर है, और उसके आगे परमावधि के 10 भेद है, ऐसा कहेंगे जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक ये 10 भेद है टोटल। तो यहाँ हमको उत्कृष्ट देशावधि का द्रव्य पता है, और हमें ये भी मालूम है कि देशावधि हो परमावधि हो या सर्वावधि हो, द्रव्य के अपेक्षा विकल्प निकालने के लिए आगे आगे संख्या निकालने के लिए हम उसको ध्रुवहार से भाग देते चले जाते हैं। तो हमें उत्कृष्ट देशावधि का द्रव्य पता है और हमको उत्कृष्ट परमावधि का अभी पता चलना है, तो ये मनोवर्गणा का अनंत वा भाग रूप जो ध्रुव हार है, ध्रुव भागहार कहो या ध्रुव हार है, उससे कितनी बार भाग देना पड़ेगा, हाँ कितने हैं, हमने 10 मान लिए ना, हाँ तो कितने बार भाग देंगे, 10 बार भाग देंगे, जघन्य से शुरू करते तो एक माइनस बार भाग देते, परंतु हमने देशावधि के उत्कृष्ट से शुरुआत किया है, उसके आगे परमावधि के 10 भेद है, तो देशावधि वाले द्रव्य को एक बार भाग देंगे तो जघन्य परमावधि का द्रव्य पता चलेगा, फिर भाग देना फिर भाग देना फिर, तो अंत तक जितने परमावधि के भेद है उतनी बार उसको भाग देना है। तो ये जो 10 संख्या है उसको हमने शलाका कहा, ये भाग देने की शलाका, शलाका यानी संख्या, उसका प्रमाण कितनी बार भाग देना है, तो इस शलाका प्रमाण बार भाग देना है, तो जाके उत्कृष्ट परमावधि का हमें द्रव्य पता चलेगा। उसको क्षेत्रगत अग्निकायिक कहा था, ऊपर लाए थे ना क्षेत्रोपम अग्निकायिक जीव, क्षेत्रोपम अग्निकायिक जीवों की उसका अर्थ क्या है, अग्निकायिक जीवों के अवगाहना के भेद गुणा अग्निकायिकों की संख्या, इसको क्षेत्रोपम अग्निकायिक जीव कहा। वो जो संख्या है उसको हमने शलाका कहा, क्योंकि उतने ही परमावधि के भेद है। तो जो देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य है उसको जितने शलाका, अभी एक बार भाग दिया तो शलाका में से एक कम कर दिया, जैसे 10 है हमारी शलाका, हमने एक माइनस कर दिया, दूसरी बार भाग दिया और एक कम किया, 8 रह गए, तीसरी बार भाग दिया, ऐसे जब तक वो शलाका राशि है उतनी बार भाग देते जाएंगे तो परमावधि का उत्कृष्ट द्रव्य हमें पता चलेगा। देखो अभी क्या कहते हैं, इस प्रकार शलाका, नीचे से तीसरी लाइन विशेषार्थ में, इस प्रकार शलाका राशि के समाप्त होने पर अंत में जो द्रव्य विकल्प प्राप्त होता है, जो संख्या रहेगी परमाणुओं की, वह रूपगत है और वही परमावधि का उत्कृष्ट विषय। रूपगत है, नहीं वो रूपी, रूपी की बात चल रही ना परमाणुओं की। यही शलाका राशि परमावधि के विषयभूत क्षेत्र, काल एवं भाव के विकल्पों के जानने भी निमित्त है, इसलिए उसको शलाका राशि कहा। इस गाथा द्वारा परमावधि के द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव की प्ररूपणा की गई है, वह इस प्रकार से। अभी फिर दोबारा समझा रहे, परमावधि असंख्यात लोकमात्र अर्थात लोक प्रमाणों को प्राप्त करता है, जानता है, इससे क्षेत्र प्रमाण की प्ररूपणा की है। समय ऐसा जो काल, वह समय काल है। शंकाकार पूछता है यहां समय विशेषण किस लिए दिया, मात्र काल कहना था, समय क्यों लगाए उसके पीछे? तो उसका समाधान, द्रव्य काल का प्रतिषेध करने के लिए समय विशेषण दिया है। कोई काल द्रव्य की संख्या नहीं समझे इसलिए वह समय कहा, क्योंकि पूर्व और पश्चात वाला काल भी समझाना है ना, अतीत अनागत। फिर शंका, द्रव्य काल का प्रतिषेध वो ध करना किस लिए किया जाता है, घ जैसे दिख रहा है ना उसको ध करो, ये द्रव्य काल का क्यों निषेध है, समय ही क्यों समझना? उसका समाधान, ये समाधान लिखा नहीं है, यहां समाधान लिखना चाहिए था, क्योंकि नीचे दूसरी संख्या शंका है ना। तू शब्द अपि शब्द के अर्थ में जानना चाहिए, अपि यानी भी, क्या लिखा है उसमें, परमो ही असंख्य जाने लोगों में इतना नहीं समय कालो दू, दू लिखा ना, हाँ क्या है, द्रव्य काल का प्रतिषेध किस लिए किया जाता है, उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे समाधान ऐसा लिखा है, हाँ समाधान के आगे क्या लिखा है, अच्छा क्यों, आप लिख लेना समाधान, जैसे हमने ऐड किया ना, तो समाधान के आगे लिखना क्योंकि उसका यहाँ प्रयोजन नहीं है, ये पूरी लाइन ही रही। ये अच्छा है, अपने यहाँ जो कुछ रह जाता है पता तो चलेगा। हाँ ये पूरी लाइन ही यहाँ डाल देना। देखो अब आगे पढ़ेंगे, अभी तू शब्द अपि शब्द के अर्थ में जानना चाहिए, समय कालो दू लिखा था ना, अवधि का समय रूप काल भी असंख्यात लोक मात्र है। देखो क्या कहते, तू शब्द कहाँ आया, गाथा पढ़ना, देखो 16वें नंबर की गाथा 42 पृष्ठ पर, परमो ही यानी परम अवधि, असंख्य जानी लोग मित्तानी, असंख्यात लोक मात्र, समय कालो दू, पहले असंख्यात लोक से तो क्षेत्र समझ में आया ही गया, काल भी, दू यानी भी लगाए ना उसका, ये काल में भी असंख्यात लोक ही प्रमाण ले लेना है, ऐसा कहना चाहते हैं। आगे के तो हमने लाइन का अर्थ समझ गया, रूपगत लही दवम, रूपगत द्रव्य को प्राप्त होता है, खेतवम अग्नि जीवे ही, वो क्षेत्रोपम अग्नि जीव के द्वारा वो उसका शलाका होती है। अब यहाँ हम फिर से 43 पृष्ठ पर आए, फिर पढ़ती हूँ। तू शब्द अपि शब्द के अर्थ में जानना चाहिए। अपि का अर्थ होता है भी, अवधि का समय रूप काल भी असंख्यात लोक मात्र है। असंख्यात लोक यानी उतने समय हैं। इससे परमावधि के उत्कृष्ट काल और भाव की प्ररूपणा की है। शंका, यह काल प्ररूपणा भले ही हो किंतु भाव प्ररूपणा नहीं हो सकती। प्रश्नकार क्या पूछता है, पर्यायों की बात कहाँ आई, काल की बात आई है, क्या इसमें पर्याय आई कि नहीं आई? कहाँ आई? तो हाँ, तो काल में अतीत और अनागत काल जब कहने में आता है तो अतीत की और अनागत की पर्याय ही तो समझना ना। पुद्गल द्रव्य कैसे समझ में आ रहा है? उस काल में पुद्गल की जो पर्याय हो रही उसी को जान रहा है, काल को जान रहा है ऐसा थोड़ी है। वहां पर उन पर्यायों को ही तो जान रहे, क्योंकि इनका विषय क्या है, रूपी पुद्गल है। देखो शंकाकार क्या बोलते, यह काल प्ररूपणा भले ही हो किंतु भाव प्ररूपणा नहीं हो सकती, क्योंकि काल और भाव की एकता का विरोध है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि अतीत और अनागत पर्याय अतीत अनागत काल है, तथा वर्तमान पर्याय वर्तमान काल है। ये भाव और काल में क्या एकता है उसको यहाँ बता रहे हैं। हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी ये अपेक्षा लगाते ही बहुत बार, उन्हीं पर्यायों की ही भाव संख्या भी है, क्योंकि वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य भाव है। यानी वर्तमान पर्याय से उपलक्षित यानी जो हम जानते हैं उसके द्वारा जो बताया जाता है वो जिसका लक्षण है, ऐसा द्रव्य वो भाव है, ऐसा प्रयोग देखा जाता है। अतीत और अनागत काल से चूंकि भाव संज्ञा वाला वर्तमान काल काल स्वरूप से अभिन्न है, अतः काल और भाव की एकता में कोई विरोध नहीं है। ये काल के बात की उसी में भाव भी समझ लेना, ये बात यहाँ बता रहे। शंका, इस व्याख्यान से जघन्य परमावधि का काल नहीं सूचित किया गया है, वह कैसे जाना जाता है? उसका समाधान, परमावधि का असंख्यात समय काल है, इस सूत्र से वह जाना जाता है। जघन्य काल भी असंख्यात समय है और उत्कृष्ट काल अभी हमने देखा असंख्यात लोक। क्षेत्रोपम अग्नि जीव, एक क्षेत्रोपम अग्नि जीव किसको कहना, उसको कहते हैं क्षेत्रोपम। क्षेत्रोपम ने क्षेत्र की उपमा दी है इसलिए क्षेत्रोपम कहा। क्षेत्रोपम ऐसे वे अग्नि जीव, क्षेत्रोपम अग्नि जीव है, उन शलाकाभूत क्षेत्रोपम अग्नि जीवों से। शलाकाभूत अग्नि जीव यानी क्या है, अग्नि कायकों की अवगाहना गुना अग्नि कायकों की संख्या, ये जो प्रमाण आया उसको शलाका कहा। यह अग्निकायिक जीवों से कुछ लेना देना नहीं है, हमें केवल संख्या जाननी है। वो संख्या समझने के लिए यहाँ अग्निकायिक जीवों को बीच में याद किया है, क्योंकि असंख्यात के भी बहुत अलग अलग भेद होते हैं, तो कौन से वाला विशिष्ट असंख्यात जानना है उसके लिए यहाँ क्षेत्रों पर अग्नि जीव कहा, उसको हम शलाका कहेंगे, परमावधि की शलाका। तो शलाकाभूत ऐसे जो अग्नि क्षेत्रोपम अग्नि जीवों से जो पुद्गल द्रव्य सिद्ध है, जो पुद्गल द्रव्य सिद्ध होता है ना क्या, उत्कृष्ट देशावधि को इतनी शलाका बार हमने ध्रुवहार से भाग देते 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 जो पुद्गल द्रव्य पाया वो उत्कृष्ट परमावधि का विषय है। यही बात है ना। उसे परमावधि प्राप्त करता है अर्थात जानता है। मैं आपको पूछूं, उत्कृष्ट देशा उत्कृष्ट परमावधि का, अरविंद भाई अभी बताना नहीं, आपको पता हो तो नहीं बताना, उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य कितना है बोलो, कितना हो सकता है? वो आपने बता दिया, मैंने सुन लिया, अभी आप नहीं बताना। बाकी लोग विचार करना। हाँ, मनोवर्गना का मैंने बताया, क्या बताया, इतने बार भाग देते जाओ, ऐसे भाग देते देते वो कितना संख्या कितनी बाकी रहेगी अभी। ये तो विचार करना है। अभी उत्कृष्ट परमावधि के आगे क्या होगा? सर्वावधि कहाँ तक जानता है? एक परमाणु को। अभी उसको गुणा किससे करना, हम उल्टा जाएंगे ना, क्योंकि जिस संख्या को ध्रुवहार से भाग देने पर एक संख्या आती है, जैसे हमने ध्रुवहार 5 समझा था पहले, तो जिस संख्या को 5 से भाग देने पर एक आता है वो संख्या कौन सी है? 5। तो यहाँ कौन सी होगी संख्या? मनोवर्गणा वाला जो है ना, उसका अनंतवा भाग जो हमने ध्रुवहार समझा था, वही यहाँ का द्रव्य है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि अभी इसको उसी संख्या से भाग देंगे तो एक आएगा, तो एक परमाणु, ये सर्वावधि का विषय है, ख्याल है? देखो हम पढ़ेंगे यहाँ, अर्थात जानता है। अभी शंका 44 पृष्ठ पर पहली शंका, वहां हम पढ़ रहे अभी, रूपगत विशेषण किस लिए दिया है? समाधान, अरूपी द्रव्य का प्रतिषेध करने के लिए रूपगत विशेषण दिया है। शंका, यदि इसके द्वारा केवल रूपी द्रव्य का ही ग्रहण किया जाता है तो फिर इससे अतीत अनागत और वर्तमान पर्यायों का ग्रहण नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वे रूपी नहीं है। ये क्या कहते हैं, ये पर्यायों को वो रूपी नहीं है कह रहे हैं। रूपीपने का अभाव भी उनमें द्रव्यत्व के अभाव से है। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, इसलिए उनमें कथनचित रूपी द्रव्यत्व सिद्ध हो जाता है। रूपी द्रव्य की पर्याय भी रूपी है, जैसे हम चेतन द्रव्य, हमारी पर्याय भी चेतन है ना, कि अचेतन भी पर्याय होगी हमारी कुछ। चेतन द्रव्य की पर्याय भी चेतन कहलाएगी, वैसे रूपी द्रव्य की पर्याय भी रूपी है, तो इसलिए वो रूपी द्रव्य है ये सिद्ध हो जाता है। उसमें भी रूपी द्रव्यपना, रूपी द्रव्यत्व ने रूपी द्रव्यपना उसमें भी है, क्योंकि पर्याय द्रव्य से टोटली भिन्न तो है ही नहीं, वो तो द्रव्य का ही अवस्था बताते हैं ना, तो उसमें वो रूपीपना है। यह रूपगत शब्द चूंकि मध्य दीपक है, क्योंकि आचार्यों को पता चला कि अभी आगे ये क्या पूछने वाला है, ये पूछेगा कि ये रूपी शब्द, ये रूपगत शब्द यहीं पर क्यों डाला, पहले देशावधि में क्यों नहीं डाला? तो कहते हैं, ये रूपगत शब्द चूंकि मध्य दीपक है, अतएव इसे अधस्तन और ऊपरी अवधि ज्ञानों में सर्वत्र जोड़ लेना चाहिए। परमावधि का अधस्तन अवधि ज्ञान कौन सा है? अधस्तन है ना नीचे वाला, देशावधि, और ऊपरी सर्वावधि, उसमें भी ये रूपगत शब्द जोड़ देना कहते हैं। बीच वाले में लगाया ना हमने, पहले देखा था कि कोई आदि दीपक होता है, कोई मध्य दीपक होता है, कोई अंत्य दीपक होता है, कहीं भी बताया तो भी उसको सर्वत्र जोड़ लेना चाहिए। जैसे हम नमो लोए सौ साहुणम कहते, तो लोए सौ शब्द हमने अंत में लगाया, फिर भी सबके साथ उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। इसे कोई तो हम ऐसे है ना, हमें बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ना है तो श्रीमान कहते हैं और फिर आगे सबके नाम बताएंगे, हर एक के आगे श्रीमान 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 नहीं लगाएंगे। हाँ, तो ये मध्य दीपक, अंत्य दीपक, आदि दीपक आदि शब्द होते हैं। तो ये रूपगत शब्द है, वह मध्य दीपक है, इसलिए इसे अधस्तन और उपरी यानी उसमें देशावधि में भी और सर्वावधि में भी सर्वत्र जोड़ लेना चाहिए। इस व्याख्यान द्वारा द्रव्य प्ररूपणा की गई है, कितने द्रव्य को जानता है वो बात इससे बता चुके। अब इस गाथा द्वारा सूचित अर्थ के निर्णयार्थ यह प्ररूपणा की जाती है, वह इस प्रकार है। ये गाथा में जो शब्द आए थे ना अभी, जो कुछ क्षेत्रगत वगैरह, जो क्षेत्र क्षेत्रोपम, वो बात को भी समझाएंगे। सूक्ष्म तेज का एक अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यात वे भाग है। हमने देखा था सूक्ष्म लिगोद की भी अंगुल का असंख्यातवा भाग है, और अंगुल का असंख्यातवा भाग था तो सूक्ष्म लिगोद लब्धि अपर्याप्त से सूक्ष्म वायु की कितनी गुणा है, कौन से असंख्यात गुणा, आउली का असंख्यातवा भाग वाला असंख्यात गुणा, उसके आगे वाला ये अग्निकायिक वाला वो भी आउली के असंख्यात वे भाग गुणा, फिर भी वो कितना है, अंगुल का असंख्यातवा भाग ही है, क्योंकि आउली तो बहुत छोटे छोटी है, अंगुल तो बहुत बड़ा है। आउली को असंख्यात बार वर्ग का वर्ग करने पर पल्ले आया, और पल्ले को असंख्यात बार वर्ग का वर्ग करने पर अंगुल आया था, तो आउली के असंख्यात वे भाग गुणा करने पर भी वो तो छोटा ही माप है उसका, अंगुल के असंख्यात वे भाग में ही उसको गिनेंगे। उससे असंख्यात गुणी बादर तेज का एक पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना में से कम करके, यानी अग्निकायिकों में से ये उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अवगाहना, अभी हमने देखा था ना 37 नंबर के पॉइंट पर थे और सूक्ष्म अग्निकायिक के तीसरे नंबर पर थे, कम करके शेष में जघन्य अवगाहना के विकल्पों को लाने के लिए एक रूप का प्रक्षेप करके, जघन्य अवगाहना का रूप का लाने के लिए, हमने देखा था ना 100 में से 5 माइनस करते हैं और हमको 5 को भी गिनना है और 100 को भी गिनना है, तो जो डिफरेंस है उसमें एक मिला देना पड़ता है, तो 95 में एक और मिलाएंगे, तो इसलिए एक रूप का प्रक्षेप करना है, एक संख्या मिला देना। सामान्य तेज का एक राशि को गुणित करने पर, यानी जो संख्या आएगी उसको सामान्य तेज कायिक की राशि, यानी तेजो कायिकों की टोटल संख्या, सामान्य कहा क्योंकि उसमें पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म बादर सबको ही आ गए, गुणित करने पर क्षेत्रोपम अग्नि जीवों का प्रमाण होता है। देखो दूसरी भाषा में ये किसको बताते हैं, शलाका को बताते हैं। शलाका किसको कहना है, यहाँ पर परमावधि के भेदों को ही यहाँ शलाका कहा है। जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक कितने भेद पाए जाते हैं, तो अपनी भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं परमावधि के भेद इज इक्वल टू, तो अग्निकायिक जीवों के अवगाहना के भेद गुणा करना किससे, हाँ अग्निकायिक जीवों का प्रमाण, प्रमाण कहो या संख्या कहो, और वो कितना है, बादर अग्निकायिकों की उत्कृष्ट अवगाहना माइनस सूक्ष्म अग्निकायिकों की वो जघन्य अवगाहना प्लस एक, हाँ मल्टीप्लाइड बाय जो उनकी संख्या, उससे यह परमावधि के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की शलाका राशि है। सबके लिए यह शलाका राशि कहा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबके लिए। देखो हम जरा समय ज्ञान चंद्रिका लाई होगी तो देखना जरा, 547 पृष्ठ 414 गाथा के टीका में हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हमने देखा वही है, समझने में आसान है। देखो अग्निकाय के अवगाहना का जघन्यतय उत्कृष्ट पर्यंत जो भेदनी का प्रमाण, यानी उसके टोटल भेद अग्निकाय जीवों के अवगाहना के भेद, ताकरी यानी उससे अग्निकाय के जीवनी का परिमाण को गुणे जो प्रमाण होई, तितने परमावधि ज्ञान के भेद है। अभी यही इसी बात को हमने बार बार देखा ना, स्वतः प्रथम भेद के द्रव्य को ध्रुवहार का भाग दिए, दूसरा भेद का द्रव्य होई। ये भी हमने बहुत बार देखा, ध्रुवहार से बार बार भाग देंगे, आगे आगे भेद का द्रव्य कितना है वो हमें समझ में आएगा। दूसरा भेद का द्रव्य को ध्रुवहार का भाग दिए, तीसरा भेद का द्रव्य होई। ऐसे अंत का भेद पर्यंत जानना। अंत भेद विषय ध्रुवहार प्रमाण द्रव्य है, क्योंकि इसके आगे एक संख्या आने वाली है, तो यहाँ का द्रव्य कितना है, जितना ध्रुवहार है उतना ही यहाँ का द्रव्य है। हम उल्टा अगर चलेंगे सर्वावधि से लेकर देशावधि तक, तो उसी ध्रुवहार के बदले उस ध्रुव संख्या से गुणा करते जाना पड़ेगा, तो उल्टा उल्टा जाएंगे तो उसका द्रव्य आएगा। ध्रुवहार का जो परिमाण यानी प्रमाण, कितने परमाणुनि का सूक्ष्म स्कंध को उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान जाने हैं। हमने जो ध्रुवहार कितना देखा था याद है, मनोवर्गणा के जो भेद है उसका अनंतवा भाग, यानी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट जो मनोवर्गणा के भेद है ना, कितने है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे तो अनंत हो गए, जिसका अनंतवा भाग भी अनंत है। तो ये हमारा ध्रुवहार है। मनोवर्गणा के द्रव्य को नहीं, मनोवर्गणा का उत्कृष्ट द्रव्य माइनस जघन्य द्रव्य, तो मनोवर्गणा के भेद आते हैं। मनोवर्गणा का द्रव्य इतना ही कहा था, परंतु उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस करना है। मनोवर्गणा के द्रव्यों के भेदों को लेना है यहाँ पर, हाँ उसका अनंत भाग। यहाँ सामान्य से कथन इतना ही लिखा है कि मनोवर्गणा का अनंत भाग, तो वो भी हमने पढ़ा था इसमें से। हाँ ऐड करना तभी मनोवर्गणा के भेद होंगे, उसका अनंत भाग। देखो ये आगे की टीका भी मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि वो ध्रुवहार के बारे में ही है। उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान का विषय ध्रुवहार प्रमाण, बराबर ताको यानी उसको ध्रुवहार ही का भाग दिए, जो संख्या है उसको उसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, एक संख्या आएगी, तब एक परमाणु मात्र सर्वावधि का ज्ञान का विषय है, सर्वावधि ज्ञान का विषय है। सर्वावधि ज्ञान पुद्गल परमाणु को जाने हैं, सो यह ज्ञान निर्विकल्प है, निर्विकल्प भेद रहित ऐसा निर्विकल्प है। निर्विकल्प है ने यानी क्या, यानी क्या, हाँ जैसे हमने देशावधि के बहुत भेद देखे, जघन्य उत्कृष्ट मध्यम, परमावधि के भी जघन्य उत्कृष्ट मध्यम बहुत भेद देखे, वैसे सर्वावधि तो एक ही है, उसमें जघन्य उत्कृष्ट मध्यम ऐसी कोई बात ही नहीं है, सर्वावधि एक ही ज्ञान है, वो ज्ञान के और कुछ भेद अलग अलग नहीं है। जैसे श्रुत ज्ञान के अलग भेद होते हैं, अवधि ज्ञान के, अभी हमने देशावधि और परमावधि के बहुत सारे भेद देखे, वैसे सर्वावधि में भेद नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं निर्विकल्प। ये हम समय ज्ञान हो गया, निर्विकल्प आत्मानुभूति उसकी बात यहाँ नहीं, वो विकल्प नहीं, यहाँ विकल्प है भेद। लिखा ना या में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं, ये भेद नहीं इसलिए उसको निर्विकल्प कहा। बहुरी जो वह ध्रुवहार कहा था, ध्रुवहार अभी हमने देखा था ना, मनोवर्गणा का अनंत भाग, ध्रुवहार यानी ध्रुव भागहार, जो फिक्स संख्या है जिसे हम बार बार भाग देते थे। सो गंगा महानदी का प्रवाह समान ही है, जैसे गंगा नदी का प्रवाह हिमाचल से निकसी विच्छेद रहित वही करी पूर्व समुद्र को प्राप्त हुई तिष्ठ्या, तैसे ध्रुवहार जघन्य देशावधि का विषयभूत द्रव्य तय द्रव्य से लेकर परमावधि का उत्कृष्ट भेद पर्यंत अवधि ज्ञान के सर्व भेदनी विषय प्राप्त हुई सर्वावधि का विषयभूत परमाणु तहां तिष्ठ्या जातै, सर्वावधि ज्ञान भी निर्विकल्प है और या का विषय परमाणु है सो भी निर्विकल्प है। परमाणु भी भेद रहित है और सर्वावधि भी भेद रहित है, उसका विषय भी भेद रहित है। ये ध्रुवहार को गंगा नदी की उपमा दी है, जैसे वो हिमाचल से निकलकर पूर्व समुद्र तक बहती है कंटिन्यूअस, वैसे ये जो ध्रुवहार है वो देशावधि के जघन्य विषयभूत जो द्रव्य है वहाँ से लेकर उसी उसी संख्या से भाग देते 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 अंत में सर्वावधि का आ गया परमाणु, इसलिए उसको ध्रुव कहा। उसी उसी संख्या से हमने भाग दिया था। मनोवर्गणा का जो द्रव्य है, जघन्य कितना है और उत्कृष्ट कितना है, उसमें जितना भेद होगे उसके, मनोवर्गणा है ना जो द्रव्य मन की रचना होती है मनोवर्गणा से होती है। जैसे हमने कारमान वर्गणा देखा, तेजस वर्गणा या औदारिक शरीर की वर्गणा है, वैसे मनोवर्गणा है तो किसी के कम परमाणु है किसी के अधिक है, तो उसमें जो डिफरेंस है उत्कृष्ट मनोवर्गणा माइनस जघन्य वर्गणा, इसमें लिया है परंतु इसमें हमने पढ़ के आपको सुनाया था। देखो हाँ वो पढ़ के भी सुना था मैंने, सुनाया था, देखो फिर पढ़ती हूँ। 386 गाथा है 532 पृष्ठ पर सम्यक ज्ञान चंद्रिका पहला भाग में। देखो मनोवर्गणा के जितने भेद है तिनको अनंत का भाग दिए, एक का भाग का जितना प्रमाण होई सो ध्रुवहार का प्रमाण जानना। तो मनोवर्गणा के केते भेद है वो कहते हैं, कहते हैं कितने भेद है। मनोवर्गणा का जघन्य प्रमाण को मनोवर्गणा के उत्कृष्ट प्रमाण में सो घटाए, जो प्रमाण अवशेष रहे ती विषय एक मिलाए, मनोवर्गणा के भेदनी का प्रमाण हो है। क्योंकि वो सारे वो पुद्गल वर्गणाएं अलग अलग है 23 जाति की, उसमें से ये जीव के संबंध में 5 जाति की वर्गणाएं है। हाँ देखो लिखा ना, हाँ श्लोक 89 में इसको सामान्य से क्या कहा, सिद्ध राशि का अनंत भाग। परंतु सिद्ध राशि के अनंत वे भाग में भी उन्होंने ये स्पेसिफिक बात बताई, एग्जैक्ट कौन सी फिगर है। ये जो मनोवर्गणा का अनंतवा भाग कहा ना यहाँ, वो कितना है, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग है। ये तो मनोवर्गणा के भेद इतने हो गए, ज्यादा अनंत हो गए तो उसका अनंतवा भाग भी इतना बड़ा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे अपना धवला पुस्तक में। यह परमावधि के, देखो हम अभी 44 पृष्ठ के अंतिम दो शब्द पढ़ रहे, यह परमावधि के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की शलाका राशि है, सबके लिए यह शलाका राशि है, अतः उसे पृथक स्थापित करना चाहिए। हर एक के लिए अपनी अपनी पृथक पृथक राशि स्थापित करेंगे, द्रव्य के लिए क्या करेंगे, हर बार ध्रुवहार से भाग देते जाएंगे। पुनः समान संख्या वाले आवली के दो असंख्यात भागों को लेकर उन्हें भी पृथक स्थापित करना चाहिए। आवली का असंख्यात भाग, आवली का असंख्यात भाग किसके लिए हो गए, वे क्षेत्र के लिए और काल के लिए। उनमें से दाहिने पार्श्व में स्थित राशि को प्रतिगुणकार व अवस्थित गुणकार, इस प्रकार दो संज्ञाएं हैं। ये दो दो जो राशि है उसमें से उसका क्या नाम क्या कहेंगे, प्रतिगुणकार और अवस्थित गुणकार। उनमें जो वह वाम पार्श्व में स्थित है उसके क्षेत्र काल गुणकार और अनवस्थित गुणकार, ये दो नाम हैं। हमने दो किए ना, आवली के असंख्यात विभाग को दो बार दो तरफ लिखा, तो एक तो अवस्थित गुणकार है और दूसरा क्षेत्र काल गुणकार या अनवस्थित गुणकार है। इस प्रकार स्थापित करके पश्चात देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को अवस्थित विरलना से समखंड करके देने पर, यानी द्रुवहार से भाग देने पर, उनमें एक रूप धरित परमावधि का जघन्य द्रव्य होता है। ये तो हमें अभी बहुत आसान है, देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को एक बार ध्रुवहार से भाग देंगे तो परमावधि का जघन्य द्रव्य होगा। देशावधि के उत्कृष्ट भाव को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर परमावधि का जघन्य भाव होगा, बराबर। देशावधि के उत्कृष्ट को असंख्यात से गुणा किया, यथा योग्य असंख्यात से, तो भाव इन्हें उतनी अधिक पर्यायों को जानेंगे, वे असंख्यात गुणा पर्याय अधिक ज्ञान में आएंगे उनके। अब क्षेत्र की बात करेंगे। देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र लोक को, क्योंकि उत्कृष्ट कितना था लोक, उसको अनवस्थित गुणकार से गुणित करने पर परमावधि का जघन्य क्षेत्र होता है। हमने देखा था क्षेत्र में वो अनवस्थित यानी वो फिक्स उतनी ही उतना बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है, इसलिए उसको अनवस्थित का, उसमें कुछ अन्य लाइन है हाँ, तो ये उसका परमावधि का जघन्य क्षेत्र हुआ, उसको भी गुणा ही करना है परंतु वो अनवस्थित है। पुनः एक समय कम पल्ल्य रूप, ये क्या था, देशावधि का उत्कृष्ट काल था, उस देशावधि के उत्कृष्ट काल को उसी अनवस्थित गुणकार से गुणित करने पर परमावधि का जघन्य काल होता है। देखो अभी काल एक समय से नहीं बढ़ा है, काल भी अभी हमने देखा था ना, ऊपर हमने देखा था आवली के दो असंख्यात भाग करना है, आवली का असंख्यात भाग एक बाजू, आवली का असंख्यात भाग दूसरे बाजू, उसमें वो भी असंख्यात से गुणा करेंगे क्षेत्र को भी और काल को भी असंख्यात से गुणा करेंगे। अब यहाँ शलाका राशि द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबके लिए वही की वही है। देशावधि में क्या होता था, जब द्रव्य की अपेक्षा अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण विकल्प बीत जाते थे तब क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होती थी, और क्षेत्र में कभी अंगुल का असंख्यात भाग, कभी घनांगुल, कभी श्रेणी वगैरह बीत जाते थे, तब जाकर काल में एक समय की वृद्धि होती थी। अब यहाँ ऐसा नहीं है, अब ये एक एक प्रदेश की या एक एक क्षेत्र की वृद्धि नहीं है, क्योंकि सबके लिए शलाका वही की वही कही थी। द्रव्य की अपेक्षा क्या करना है, तो उसी फिक्स ध्रुव भागहार से भाग देते जाना है, और भाव के लिए यथायोग्य असंख्यात से गुणा करना है। क्षेत्र और काल के लिए क्या करना है, तो ये असंख्यात गुणा करना है, वो अनवस्थित कहा उसको, ये असंख्यात से गुणा, एक लोक से वो असंख्यात लोक हो जाएगा और काल भी असंख्यात काल हो जाएगा, उसका असंख्यात समय हो जाएंगे। द्रव्य के लिए फिक्स वही है ध्रुव भागहार, बाकी अनवस्थित कहा, देखो ना, देखो देखो ये ऊपर से तीसरी लाइन देखो, दाहिने भाग में क्या करना, दाहिने पार्श्व में स्थित राशि को प्रतिगुणकार व अवस्थित गुणकार, इस प्रकार दो संज्ञाएं, और वाम पार्श्व में स्थित है उसको क्षेत्रकाल गुणकार और अनवस्थित गुणकार, ये दो नाम है, यानी क्षेत्र और काल दोनों के लिए जो गुणकार है वो अनवस्थित है, वही का वही फिक्स नहीं है परंतु है तो असंख्यात, क्षेत्र भी असंख्यात गुना होगा और काल भी असंख्यात गुना बढ़ेगा, परंतु प्रत्येक भेद के लिए वही का वही गुणकार नहीं है, वो अनवस्थित है, अवस्थित नहीं है, ध्रुव नहीं है। भाव के लिए भी अपना अपना योग्य, द्रव्य के लिए वो ध्रुव है। देखो परमावधि का जघन्य काल होता है। अब नीचे से छठी लाइन में आ गए हैं, शलाकाओं में से एक रूप कम करना चाहिए, इसके बीच में कोई लाइन है क्या, हाँ देखो जब हाँ होगी तो बताना। देखो हमने क्या देखा, अभी जघन्य परमावधि का द्रव्य भी देखा, क्षेत्र भी देखा, काल भी देखा और भाव भी देखा, तब शलाका राशि सबके लिए एक ही है, हमने देखे थे शलाका में से एक कम कर देना। अब आगे वाले कहेंगे, पुनः परमावधि के जगन्य द्रव्य को अवस्थित विरलना से समखंड कर देने पर उनमें एक खंड परमावधि का द्वितीय द्रव्य विकल्प होता है। अपनी भाषा में ध्रुवाहार से भाग देंगे तो दूसरा विकल्प होगा द्रव्य अपेक्षा। परमावधि के जगन्य भाव को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर उसका ही द्वितीय विकल्प होता है। भाव में भी असंख्यात गुणा करना है उसके योग्य। पुनः परमावधि के जगन्य क्षेत्र को प्रतिगुणकार से गुणित अधस्तन विकल्प के गुणकार से गुणित करने पर परमावधि के क्षेत्र का द्वितीय विकल्प होता है। ये क्या कहा देखो देखो दो बार गुणाकार करना है। देखो ऊपर हमने दो राशि किया था, एक अवस्थित गुणकार और एक अनवस्थित गुणकार। प्रतिगुणकार कहो या अवस्थित गुणकार कहो एक ही बात है। और क्षेत्रकाल गुणकार और अनवस्थित गुणकार ये दो नाम उसी के लिए थे। अभी यहाँ क्या किया, दूसरा विकल्प हमको निकालना था क्षेत्र की अपेक्षा। तो क्या कहा, जगन नीचे से दूसरी लाइन, जघन्य क्षेत्र को, जघन्य परमावधि वाला जितने क्षेत्र को जानता था उसको, असंख्यात लोग भी वहां भी हुआ था ना, उसको प्रतिगुणकार से गुणित अधस्तन विकल्प के गुणकार से। यानी अधस्तन जो विकल्प का गुणकार है, अधस्तन विकल्प का गुणकार क्या है, उत्कृष्ट देशावधि को जिस गुणकार से गुणित करने पर जघन्य परमावधि का क्षेत्र आया था उसको कहेंगे अधस्तन गुणकार। उस गुणकार को ये प्रतिगुणकार से गुणा करना, गुणकार से गुणा करना और उससे पहले विकल्प को गुणा करना तो दूसरे विकल्प का क्षेत्र आएगा। फिर पढ़ती हूँ मैं, देखो अभी हमको क्या करना है, द्वितीय विकल्प निकालना है। द्रव्य और भाव की बात बता दी, यहाँ क्षेत्र की बात बता रहे। नीचे से दूसरी लाइन, परमावधि के जघन्य क्षेत्र को गुणा करना है तो कौन सी संख्या से गुणा करना है, आगे के अभी इन्वर्टेड में ला डालो, प्रति गुणकार से गुणित अधस्तन विकल्प के गुणकार से यहां तक गुणित करने पर, जघन्य क्षेत्र को गुणित करने पर किससे गुणा करना है, प्रति गुणकार से गुणित अधस्तन विकल्प का गुणकार। ये पूरा एक शब्द लेना, इससे नीचे वाले क्षेत्र को गुणा करना तो आगे वाला क्षेत्र मिलेगा। इसी गुणकार से अभी वही गुणकार रखना, परमावधि के जघन्य काल को गुणित करने पर काल का द्वितीय विकल्प होता है। यानी क्षेत्र और काल के लिए गुणकार वही है। शलाकाओं में से एक रूप कम करना चाहिए, फिर शलाका में से एक रूप कम कर देना। पहले जघन्य निकाला था तब एक रूप कम किया, अब दूसरा विकल्प निकाला तब भी एक रूप, एक शलाका में से एक कम कर दिया। पुनः द्वितीय विकल्प रूप जघन्य द्रव्य को अब क्या करेंगे, द्रव्य को निकालने के लिए ध्रुव भागहार से भाग देंगे। अवस्थित विरलना से समखंड करके देने पर उनमें एक खंड तृतीय विकल्प रूप द्रव्य होता है। भाव की बात करेंगे अब, द्वितीय विकल्प रूप भाव को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर तृतीय विकल्प रूप भाव होता है। अब क्षेत्र और काल की बात करेंगे, अवस्थित गुणकार से गुणित द्वितीय विकल्प के गुणकार से। देखो ये कुछ बात समझ में आ रही है, देखो यहाँ दो दो गुणकार हैं, एक अवस्थित गुणकार एक अनवस्थित गुणकार। जब क्षेत्र की अपेक्षा ये जघन्य है, फिर दूसरा विकल्प है, तीसरा है, चौथा है, आगे आगे का विकल्प निकालने के लिए क्या करना है, तो जघन्य के निकालने के लिए हमने वो जगह उत्कृष्ट देशावधि को असंख्यात गुणा किया था, काल में भी वैसा ही किया था। तो ये जघन्य काल और जघन्य, अब ये जघन्य से लेकर दूसरा जब विकल्प निकालना था तो क्या किया था, इसके बीच वाला जो है ना वो पहला गुणकार और इसके बीच वाला ये दूसरा गुणकार, तो जो अभी हमने जघन्य मिलन निकाला था और अभी हमको दूसरा विकल्प निकालना है, तो दूसरा विकल्प निकालने के लिए क्या करना है कि जो अवस्थित गुणकार है उससे ये पहला वाले गुणकार को मल्टीप्लाई किया था, गुणा किया था, और उससे जघन्य क्षेत्र को गुणा किया था तो दूसरा क्षेत्र आया था। अभी हमको तीसरा विकल्प निकालना है क्षेत्र का, तो क्या करना है, अवस्थित गुणकार से इस दूसरे गुणकार को गुणा करना और उस टोटल गुणकार से दूसरे क्षेत्र को गुणा करा तो तीसरा क्षेत्र आएगा। अवस्थित तो वही है परंतु आगे आगे वाला गुणकार बढ़ेगा ना। दूसरा निकालने के लिए कितना गुणकार था वो तो बढ़ते गया था, जिस संख्या से गुणा किया था यहाँ पर उस संख्या से वो पहले वाले गुणकार से गुणा करते जाओ, अवलिका संख्यात विभाग से। यानी दूसरी भाषा में आगे वाला गुणकार असंख्यात गुणा होता जाएगा। पहले में जो असंख्यात का गुणकार था उससे दूसरे वाला का गुणकार उससे असंख्यात गुणा, यानी वो फिक्स उस गुणकार को फिक्स गुणकार से गुणा करता जाना। मान लेते हैं अभी पहले वाला जो है फिक्स गुणकार हम दो समझेंगे ना, अभी बहुत बड़ी संख्या नहीं लेंगे, तो ये दो गुणा किया हमने। आगे वाला जो गुणकार है वहां का जो कुछ गुणकार होगा, चार भी होगा या कुछ भी होगा, तो उसको फिर दो से गुणा करो तो आठ हो जाएगा। तो यहाँ का गुणकार आठ हो जाएगा, आगे वाले के लिए आठ को फिर दो से गुणा करना तो सोलह गुणा हो जाएगा। गुणकार भी गुणकार असंख्यात गुणा होते चला जाएगा। आगे आगे के विकल्पों में गुणकार की संख्या गुणा करने वाली संख्या फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। पहले दो गुना था फिर चार गुना हो जाए फिर आठ गुना होगा सोलह गुना जो कुछ है, क्योंकि हमने फिक्स दो समझा। यहाँ पर नहीं समझा, पहले से दूसरा क्षेत्र निकालने के लिए हमने विशिष्ट असंख्यात से गुणा किया, दूसरे से तीसरे निकालने के लिए वो असंख्यात से, और पहले जो फिक्स एक असंख्यात रखना, कोई भी फिक्स असंख्यात रखना, उससे पहले वाले गुणाकार को गुणा करना है। अभी हमने दो की बात भूल जाओ, तीन की समझेंगे हम। पहले से दूसरा निकालने के लिए वहां का गुणकार कोई अन्य था, चार समझो, तो दूसरे से तीसरा निकालने के लिए क्या, वो पहले वाला चार गुणा तीन करना, तो बारह से गुणा किया वहां पर। आगे वाला निकालने के लिए बारह से फिर तीन से गुणा करो, छत्तीस से गुणाकार होगा। आगे वाला गुणकार छत्तीस से तीन गुणा हो जाएगा, उससे आगे का गुणकार उससे तीन गुणा हो जाएगा। गुणकार मल्टीप्लीकेशन में बढ़ेगा, यही तो हुआ ना, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चौथे में, क्योंकि वो बढ़ते चला गया ना। जैसे पहले हमने चार समझा, फिर बारह हुआ, फिर छत्तीस हुआ, गुणकार भी मल्टीप्लीकेशन में बढ़ेगा ऐसा कहें। जैसे भागहार तो ध्रुव वही का वही रहा, वैसा या नहीं, यानी क्षेत्र कितना फास्ट बढ़ेगा और अधिक अधिक क्षेत्रों को जानेंगे वे। कहने के लिए असंख्यात लोग ही कहेंगे, जघन्य परमावधि भी, क्योंकि हमने लोक को असंख्यात गुणा किया था तो जघन्य परमावधि भी असंख्यात लोक को जानेगा और उत्कृष्ट परमावधि वाला भी असंख्यात लोक को जानेगा। फिर भी हर बार उसके असंख्यात गुणा जो है वो असंख्यात गुणा का प्रमाण भी असंख्यात गुणा बढ़ेगा। अभी जो कुछ है वो समझना। एक बात है यहाँ पर, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सब एक साथ, क्योंकि शलाका सबके लिए वही की वही है। देशावधि में द्रव्य के बहुत विकल्प बीत जाने पर क्षेत्र बढ़ता था, क्षेत्र के बहुत विकल्प बीत जाने पर काल बढ़ता था, द्रव्य और भाव एक साथ बढ़ते थे। परमावधि में सब एक साथ चेंज हो रहे हैं, अगले अगले विकल्प में। द्रव्य में तो ध्रुव भागहार से भाग देते जाएंगे, भाव में असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा होता है, द्रव्य और क्षेत्र और काल भी असंख्यात गुणा होते हैं, परंतु उसके लिए जो गुणकार है वो गुणकार भी गुणित प्रमाण में होता चला जाता है। अभी इतना ही समझेंगे ना, गुणित गुणकार भी गुणित प्रमाण में बढ़ता है। हाँ गुणकार भी अवश्य, हाँ उसका अपना अपना गुणकार है ही है अलग, उसमें फिर अवस्थित गुणकार से बढ़ेगा। हाँ देखो अभी ये 46 पृष्ठ पर पहले पैराग्राफ में नीचे से दूसरी लाइन, उन्होंने पहला विकल्प दूसरा विकल्प तीसरा विकल्प रूप निकाल के दिखाया, चतुर्थ पंचम छठे और सातवें आदि विकल्पों को इसी प्रकार ही ले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई भी विशेषता नहीं है। अब शंकाकार पूछता है इस प्रकार जाने पर अनवस्थित गुणकार किस स्थान में घनलोक मात्र होता है, बढ़ते गए ना वो, इस प्रकार पूछने पर उत्तर कहते हैं आवली के असंख्यातवे भाग के अर्धच्छेदों से लोक के अर्धच्छेदों को अपवर्तित करके लब्ध मात्र अधवान जाने पर अनवस्थित गुणकार लोक मात्र होता है क्योंकि विरलन राशि मात्र अवस्थित गुणकारों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि वहां पाई जाती है। देखो अर्धच्छेद ने जितनी बार दो को संख्या को आपस में गुणा करने पर लोक आएंगे तो उसको हम कहेंगे ये लोक का अर्धच्छेद है, जितनी दो राशि आपस में गुणा करने पर आवली का असंख्यात्व भाग आएगा तो उसको कहते हैं आवली का अर्धच, आवली के असंख्यात्व भाग का अर्धच्छेद, तो उससे उसमें से भाग क्यों दिया था, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट आवली का असंख्यात्व भाग था और हमको लोक किस स्थान पर आता है उसको देखना था, है ना। अन्योन्य अभ्यस्त राशि किसको कहते मालूम है, हाँ जैसे हमने वो पहले हमने बहुत सारे गणित किए थे नाना गुणहानि वगैरह, तो दो संख्या उतनी बार लेके आपस में गुणा करते थे तो उसको अन्योन्य अभ्यस्त राशि कहते थे, इसको फिर पढ़ेंगे हम क्योंकि अभी तो समझ में आने वाला नहीं है, अभी अपना टाइम पूरा होने को आया ना। पढ़ेंगे फिर कल इसको समझेंगे। आवली के असंख्यात भाग के अर्धच्छेदों से, ये नीचे भागाकार में रखना नीचे, लोक के अर्धच्छेदों को अपवर्तित करके यानी भाग देना, लब्ध मात्र अधवान जाने पर उतना काल जाने पर अनवस्थित गुणकार लोक मात्र होता है, तब जाके वो लोक इतना हो जाता है उतने काल जाने पर, क्योंकि विरलन राशि मात्र अवस्थित गुणकारों की, क्या कहते हैं अवस्थित गुणकार जो है उसकी जो विरलन राशि करेंगे उसको विरलित कर देंगे, अवस्थित गुणकार को विरलित कर देंगे तो उनकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि वहां पाई जाती है। जब लोक होता है, दूसरी भाषा में ये जो विरलन राशि कही ना अवस्थित गुणकार, अवस्थित गुणकार को विरलित कर दो और वहां उस राशि का आपस में गुणा कर दो तो लोक प्रमाण आ जाएगा, इसको कल ही समझेंगे हम क्योंकि अभी ये गणित का प्रकरण आया ना, इसमें ये समाधान से फिर कल पढ़ेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा बेन।